वलो अन्नहुम आमन, और अगर वो ईमान ले आते। अब देखें, पीछे अभी कुफर की बात है, यहां पे ईमान की बात है। ईमान और कुफर ऑपोजिट है ना, तो कुफर वहां पे किसको कहा गया था? जादू को, क्योंकि ये उस कॉन्टेक्स्ट में ही आप समझे, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, ये पिछली आयत के साथ ही रिलेटेड। और अगर वो ईमान लाते, इन यही बनी इसराइल, यही जो लोग जादू कर रहे थे, अगर ये ईमान लाते, क्या मतलब इसका? कुफर छोड़ देते और ईमान लेकर आते। कुफर क्या था? जादू, यानी जादू की चीजों को छोड़ देते और अल्लाह के कलाम की तरफ आ जाते, जाहिर है, जादू के कलाम को छोड़ देते। वह तको, और तकवा इख्तियार करते। तो यहां पे ईमान क्या है? जादू छोड़ देना और तकवा इख्तियार करना, अल्लाह ताला से डर के जिंदगी गुजारते। लमुसूबतुन मिन इंदिल्लाही खैर, तो आखरत का सवाब इनके लिए बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। जो इनको आखरत में मिलना है, वो दुनिया की चीजों के पीछे रीझते हुए, तुम क्या मिलता है ना, दुनिया के छोटे से फायदे। कोई देखें ऐसे तो नहीं जादूगर के पास जाता कि मुझे जादूगर के पास जाकर कोई ये सवाल करो मुझे जन्नत चाहिए, ऐसे लोग तो नहीं ना जाते। जाहिर ही बात है, फजूल कामों के लिए जाते हैं, गलत कामों के लिए जाते हैं, या जो अपनी कोई सही हाजत के लिए भी जाते हैं, तो वो भी कुफर में एंड अप हो रहे हैं। समझे कि ये हमारी बाउंड्री है, हमने इसको नहीं क्रॉस करना। तो अगर वो ये करते कि ये कुफर ना करते और तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करते, तो इनके लिए आखरत में जो रखा हुआ है ना अल्लाह ताला के पास, जो है वो खई रुन है, इतना अच्छा, हर किस्म की भलाई है उनके लिए। खई रुन नकिर आया अगेन, वो जो वहां पे मिलना था ना, वो बहुत बेहतर है इससे। अगर दुनिया में कोई चीज की आपकी कमी रह भी जाती है, तो आखरत में अल्लाह ताला इतना कुछ अता करेगा, क्योंकि एक इंसान बच के रहता है इन चीजों से। वो जानता है यहां पे जाऊंगा, किसी ने उसको बता दिया इधर चली जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, देखना ऐसा हो जाएगा, बच्चा नाफरमान हो गया, फरमा बरदार बन जाएगा, तुम जाके वहां पे ये करो, नहीं जाना। इसलिए कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ में सब चीज। हाँ, आप जरूर जाएं ऐसे लोगों के पास जो आपको कुरान से बताते हैं कोई चीजें। कुरान सारा का सारा ही शिफा है, इसके अंदर हिदायत है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे हमारे मसाइल का हल है। वो आपको पढ़ने के लिए बताते हैं, यहाँ से मंजिल है, आप मंजिल जानते हैं, उसमें क्या है, वो उसमें आयतें ही कुरान की, वो वाली आयतें सारी एक जगह कर दी, बजाय मैं अब सारा वक्त ढूंढती रहूं, इस जगह जाऊं, इस नंबर की आयत देखूं, इस जगह जाऊं, उन्होंने सारी एक जगह जमा कर दी और उसका नाम एक मंजिल रख लिया। वो आप पढ़ लेंगे, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, कोई उसके अंदर हरज नहीं। लव कानू यालमुन, काश कि इनको पता हो ये बात कि आखरत का सवाब बेहतर है ये दुनिया की ही अपने मसाइल को हल करने के लिए, या दुनिया की ही चाहतों में, या ख्वाहिशात ऐसी हैं, मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, इसके पीछे ही अपना ईमान ही इन्होंने बेच दिया। काश कि इनको पता हो कि अल्लाह ताला के पास जो है ना, उसके लिए जरा सब्र कर लें तो वो बहुत बेहतर है। इन सब की वजह से आखरत चली गई तो कुछ नहीं रह गया, लेकिन इंसान का हाल क्या है? बल तो उसे रून अलहयात दुनिया, वो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देता है, हालांकि वाल आखरत खैर हूँ, अब का आखरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखें अल्फाज की बात है ना, जादू भी अल्फाज ही हैं, वर्ड्स ही हैं, और जो कहे मुझे तो जादू पे यकीन ही नहीं, कोई चीज नहीं होती जादू वादू, कुछ नहीं होता। उसने कुरान का इनकार किया, कुरान बता रहा है जादू के बारे में, आप कैसे कह सकते हैं कुछ भी नहीं होता? तो अब अल्फाज की एक और बात आ गई, ए ईमान वालो ला तकूलू राइना वकूल उन्जुरना, तो राइना मत कहो, उन्जुरना कहो, वस्माओ और सुनो। अब ये क्या बात है? असल में जो यहूदी थे और उनके साथ कुछ ऐसे भी जो मुनाफिक थे, वो भी इनके साथ ही लगे हुए थे। अब यहूदियों का हमेशा से एक बदफितरत चीज थी इनके अंदर, कि अल्फाज को तोड़ते मरोड़ते थे, अल्लाह की किताब में से भी अल्फाज की ऐसे तहरीफ करते थे। आपने पहले भी पढ़ा, हित्तातुन हिंतातुन करके इस तरह से करते थे, और जब उनको कोई कहा जाता था तो उसको इस तरह अपने मुताबिक करके, ट्विस्ट करके, बस वो नहीं मानना जो अल्लाह ताला ने फरमाया। देखिए ना, एक बात है ना, अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, जो अल्लाह ताला ने हमें चीजों का कह दिया गया कि ये करना है और ये नहीं करना, यहूद की हमेशा ये रविश रही है कि जिस चीज से मना किया जाए ना, ये नहीं करना, उन्होंने वो ही करके ही छोड़ना है। इनकी जो दिखे हिस्ट्री उठा के देख ले इनका, और कुरान भी ये बता रहा है हमें। और यही इम्तिहान होता है ना, हमारे सामने भी कई चीजें ऐसी आती हैं ना कि जिसके अंदर हमें बताया गया ये नहीं करना, हम फिर भी करते हैं। यहां पे जैसे आ गया लव कानू यालम, लेकिन देखें एक एक बात और नोट करें यहां पे, लव कानू यालमून एंड में आया, दो दफा आया, और जब ये 102 आयत के अंदर आप देखें वलकद अलीमू, वो जानते, लेकिन एंड में आया वो नहीं जानते, ये क्या निगेशन नहीं हो गई? एक जगह कहा गया वो तो जानते हैं कि आखरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है, और एंड में आया काश वो जान लेते, इसका मतलब वो जानते नहीं है, तो ये क्या कॉन्ट्रोडिक्शन तो नहीं है ये? इसका क्या जवाब देंगे आप, खुद भी सोचा करें ना। देखें यहाँ पे ये अच्छी तरह समझ लें इस बात को, इल्म वो होता है जिस पे अमल किया जाए, जिस इल्म पे अमल ही ना किया जाए वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन तो रखते थे कि हाँ इसका आखरत में कोई हिस्सा नहीं, उनको पता था ये गुनाह है, उनको पता था कि हारूत और मारूत कह रहे हैं ये कुफर है, मत इसके अंदर पढ़ो, ये फितना है, ये हम तो आजमाइश के लिए आए हैं, इसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहा है कि तुम में से कौन है जो इससे बच के रहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ख्वाहिशात इतनी बड़ी थी कि दे डिडंट केयर, फिर कुफर होता रहे जो मर्जी होता रहे, हमारा काम बनना चाहिए। उनको पता तो था कि इससे हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो इसके ऊपर जब अमल ही नहीं कर रहे, जब इसको यानी इस चीज से बच ही नहीं रहे, तो फिर ऐसे ही है जैसे जाहिल। तो हम भी ये समझ लें, हम जितनी मर्जी सर्टिफिकेट्स ले लें, कोर्सेस कर लें, जहां मर्जी जाके पढ़ लें, मदीना यूनिवर्सिटी तक पढ़ लें, लेकिन अगर हमारे अमल के अंदर वो चीज़ नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई इल्म नहीं है। आज इंफॉर्मेशन की भरमार है, ये नहीं कि किसी को कुछ पता नहीं है, पता तो सबको ही है, हर एक ही कहता है, जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा ना वो भी कहता है मुझे सब पता है, लेकिन असल वो है इल्म जो इंसान के अमल में आए, जो इंसान को रोक दे उस चीज से जिससे अल्लाह ताला ने मना किया। अब किसको नहीं पता झूठ हराम है, किसको नहीं पता ये गुनाह है, फिर भी झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोले जाते हैं। हालांकि हम बच्चों को भी नसीहत करते हैं, नहीं झूठ नहीं बेटा बोलना, गलत बात है, और पसंद भी नहीं करते कोई हमसे झूठ बोले, खुद लेकिन खुद झूठ बोलते रहते हैं। तो ये कोई इल्म ही नहीं है फिर, इसका मतलब हमारे पास कोई इल्म नहीं, इंफॉर्मेशन है बस, समझ आई? तो ये वो लोग थे जो कि हमेशा वो काम करते थे जिससे मना किया गया। अब इसी पे आप सवाल है कि क्या हम भी ऐसा तो नहीं कि हमेशा जिस चीज से हमें टेस्ट किया जाता है अल्लाह ताला देख रहा होता है ये करता है कि नहीं करता, टेम्पटेशन है सामने, आप बन सवर के एक शादी पे जा रही हैं फुल मेकअप करके, बहुत अच्छे ड्रेसअप होके, आप कहती हैं कि लोग मेरी बड़ी तारीफ करें और इस तरह मेरे बड़े गर्विदा हूं मैं, सब में हसीना आलम लगूं, आपको पता है कि ये गलत है, इन छोटी सी दुनिया की तारीफ की खातिर आपने अल्लाह ताला के जो हुक्म है उसको पसे पोश डाल दिया। छोटे से कारोबार में आपको पता है कि लॉटरी हराम है, एक बंदे ने लॉटरी रख ली, उसने कहा इसे कारोबार मेरा चलेगा, उसको पता है ये हराम है गलत है, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला टेस्ट करता है, उससे आपको तारीफें भी मिल जाएंगी, और लॉटरी रखने से हो सकता है उसके पास ज्यादा भी कस्टमर आए, लेकिन यही तो टेस्ट था, जैसे सप्त वाले दिन मछलियां ऊपर आती थीं, लोग ज्यादा मछलियां पकड़ सकते थे, फायदा तो मिल रहा था ना, एक वो जो उन्होंने चाहा वो तो मिल गया ना, बजाहिर तो फायदा मिल रहा है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी है इसके अंदर, अल्लाह ताला टेस्ट करता है, ऐसे टेस्ट भेजता है। तो इनको तो जब जब मना किया गया इन्होंने वो ही काम करके दिया। इनका एक ये तरीका भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे तो राइना कहते थे, राइना ऐसे ही है जैसे आप, जैसे हर जुबान के अंदर कुछ अल्फाज होते हैं ना, जैसे आप कहते हैं आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, मतलब आप मुझे समझ नहीं आई, इफ यू कैन से इट अगेन, तो ये इसका मतलब होता है। इसी तरह वो राइना कहा करते थे, वो अरेबिक में ये था, ये एटिकेट्स होते हैं ना एक जगह। अच्छा अब राइना मतलब मेरी रायत कीजिए, यानी मुझे दोबारा समझा दें जरा इसको, लेकिन इनकी हिब्रू के अंदर राइना बेवकूफ अहमक को भी कहते थे, तो ये अपने दिल के अंदर राइना कह कह के ना तो इस तरह कहते थे कि हम तो ये कह रहे हैं, या फिर आईना, जरा सा जुबान को जरा ज्यादा आईना कह दिया तो मेरा चरवाहा। इसमें भी डिसरिस्पेक्ट थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। इस तरह से ये करते थे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे ना, तो बजाय अस्सलाम वालेकुम कहने के क्या कहते थे, साम वालेकुम। साम मतलब मौत, मौत हो आप पे। और अगर कह दिया जाए क्या कह रहे हो, तो कहेंगे हमने तो सलाम अलैकुम कहा। नहीं, तुमने सलाम अलैकुम कहा। नहीं जी, आप ही अपने कानों का कुछ जरा इलाज कराएं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर फौरन मुकर जाते थे। अब वो अल्लाह ताला को तो दिलों के हाल पता है ना कि ये राई ना क्यों कह रहे हैं। अंदर ही अंदर हंसते थे कि हम तो इनको अहमक कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस वर्ड से ही मना कर दिया। ये वर्ड ही नहीं आपने यूज करना जिस वर्ड के अंदर ड्यूल माना आ सकता हो, जिस वर्ड से कहीं डिसरिस्पेक्ट हो सकती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो वर्ड ही नहीं कहना, बल्कि उसको चेंज कर दो, उनजुर ना कह दो। हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ नजर कीजिए, नजर जरा थोड़ी हमारी बात सुन लें। वस्माउ, और गौर से सुनो, गौर से सुनो, यानी पहली दफा इतनी गौर से सुना करो कि तुम्हें कहना ही ना पड़े, उनजुरना भी ना कहना पड़े। इससे क्या पता चला कि नेगेटिव लोगों को कैसे आपने अवॉइड करना है। जो इस तरह के लोग होंगे वो आपको हमेशा मिलेंगे, जो ऐसी चीजें करेंगे या ऐसे सवालात करेंगे, आपने बात कह भी दिया, वो कहीं से कहीं जाके सवालात करें, उनको अवॉइड करें। उनके मुंह भी नहीं लगना कि जो है ना, जैसे दू बदू उनको जवाब देना शुरू कर दें, या तुम क्या कह रही थी, तुमने ये कहा है, अच्छा मुझे नहीं। इग्नोर करें, और इस जो जो भी वर्ड है, आइंदा आप लोग ये नहीं यूज करेंगे, आप ये यूज करें, ठीक है। दूसरी क्या बात पता चली, दूसरी बात पता चली कि कोई भी इल्म लेने के लिए सबसे पहले अदब होना जरूरी है। जो पहले बड़े लोग कहा करते थे ना, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, वो बिल्कुल सही बात है। अगर अदब नहीं सीखा ना, तो आके आप चढ़ाई करना शुरू हो जाए टीचर पर, या आप आपकी मसलन है, आपकी मॉनिटर हैं, उनके साथ बदतमीजियां शुरू कर दें और ये शुरू कर दें, अगर आपके अंदर अदब नहीं है ना, आपको कभी इल्म नहीं आएगा। याद रखें, आप सीख लें ये जितना भी से लें, लेकिन याद रखें आपको भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे, इल्म के पाए पे पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए सहाबा कहते हैं हमने पहले अदब सीखा फिर इल्म सीखा। हाँ, अदब जरूरी है। तो हमें इससे ये पता चला कि जब तालीम लेनी हो, एक तो गौर से सुनना चाहिए, उसके बाद भी जब बात पूछनी हो तो अदब के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। तीसरी बात ये कि जू माने ऐसे अल्फाज जिसमें दूसरे की तहकीर हो रही हो वो नहीं करने चाहिए। अब आप देखें, यही लदीना आमनू कह के बात की गई है, ईमान वालों को कहा गया, ये नहीं कहा गया सहाबा तुम ऐसे, या असहाबर रसूल, ये नहीं कहा गया। अब हम तो कहें ना उस जमाने में ऐसे होता था, तो सहाबा को कहा जा रहा है, इसलिए कि करते तो यहूदी थे, लेकिन तुम सभी चेंज कर लो, सब सहाबा सारे मुसलमान राइना की जगह उनजुरना कहना शुरू कर दो। इसलिए कि फिर जो राइना कहेगा, फिर पता चल जाएगा कि ये क्या, इसके दिल के अंदर क्या है। अल्लाह ताला ने ये अल्फाज चेंज करा दिए। इससे आपको ये भी पता चलेगा अल्लाह ताला को अपने नबी की जरा भी कोई डिसरिस्पेक्ट करे ये कबूल नहीं है। आप सूरा हुजरात उठा के देख लें, अल्लाह ताला ने फरमाया या यो लदीना मनु ला तरफाउ अस्वातकुम फौक सौत नबी, अपनी आवाजें भी नबी की आवाज से बुलंद ना करना। वला तजहरु लहू बिल कौली का जहरी बाद कुमली बाद, ऐसे भी एक उनके साथ ऐसे बात ना किया करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। अंतहबत आमालकुम वअंतुम ला तशुरून, ये ना हो तुम्हारे अमल ही जाया हो जाए, तुम्हें पता ही ना चले, तुम्हारी सारी नेकियां गारत हो जाएंगी जरा सी डिसरिस्पेक्ट नबी की। और अगर आज कुछ समझा ही ना जाए, ऐसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात करते हैं जैसे कोई आम आदमियों के बारे में नहीं बात कर रहे होते, जैसे आम किसी का, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने, आप कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले। जो बेहतरीन इंसान इस जमीन पे कभी चला या कभी चल सकता है वो नबी अलैहिस्सलाम है। उनसे बढ़ के कोई इंसान है ही नहीं। अंबिया के भी जो सरदार, उनमें भी टॉप पे, आप मुझे बताएं, उनको आपने ऐसे समझा कि आप उठ के, हम अपने वालदैन की भी कोई बात होती है ना, अब हमारी जनरेशन के लोग, आई डोंट नो आज तो शायद इतना ना हो, लेकिन जो पिछली जनरेशन के लोग हैं अपने वालदैन की भी बात होती है, हालांकि वालदैन तो हमारी तरह के ही हैं, कई उनसे गलतियां होती हैं, वो भी गुनाहगार हैं जैसे हम हैं, फिर भी हम उनको कितने एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं, वो उन्होंने ऐसे नहीं किया, उनका ये मतलब नहीं था, नहीं वो ऐसे नहीं, कितनी उनको एक्सक्यूजेस देते हैं, उनकी कितनी जस्टिफिकेशंस देते हैं, हालांकि वो हमारे वालदेन है, मतलब गुनाह हो सकता है, उन्होंने गलत काम किए हो सकते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वालदेन से भी ज्यादा हक रखते हैं हमारी जानों पर, और जिनकी से कोई गलत काम का कोई शुबा भी नहीं हो सकता, उनके ऊपर ऐसे खड़े होकर एतराज करते हैं और ऐसी बातें छांटते हैं जैसे कि हम फ्री फॉर ऑल हैं कि जो मर्जी उनके ऊपर बात करें, उन्होंने ऐसी शादी क्यों कर ली थी, वो ऐसे क्यों नहीं करते थे, उन्होंने ये क्यों कहा, हमारी जुर्रत कितनी ज्यादा है, कभी नहीं हम सोचते हम तहबत आमालकुम वानतुम ला तशुरून कि तुम्हारे अमल सारे जाया हो जाए और तुम्हें पता भी ना हो, इतनी डिसरिस्पेक्ट। इवन मुझे तो ऐसे लगता है कि ये भी नहीं हमें कहना चाहिए आ हजरत ऐसे करते थे, हजूर ऐसे करते थे, हजूर आ हजरत कहने से नहीं कुछ होता, नबी सल्लल्लाहु वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कहा जाए, कोई लोग कहने लग जाते हैं हजरत मोहम्मद ऐसे करते थे, हजरत का हजरत इस नो, मतलब हमारी जुबान के अंदर एक रिस्पेक्ट का कलमा है, ठीक है हजरत या आ हजरत, हम एक रिस्पेक्ट के तौर पे ही कह रहे होते हैं, लेकिन आपको कहा गया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप दुरूद पढ़ें, ठीक है आप एक मजलिस है, मसलन हमारी क्लास है, अब उसके अंदर आपने 2-3 दफा पढ़ लिया, देखो हर दफा नहीं पढ़ सकते तो ठीक है उसके बाद जायज है, उलमा इसकी इजाजत देते हैं कि उसके बाद जायज है, लेकिन कम अज कम जब पहली दफा नाम आए तो तब तो दुरूद पढ़ें, आ हजरत कह के बात करते रहते हैं तो ये आपने तो कोई भी दुरूद नहीं पढ़ा, तो कैजुअली उनके बारे में बात ना करें, ये कहने का मतलब है डोंट बी सो कैजुअल जैसे आप किसी भी इंसान के बारे में करते हैं, जैसे आप अपने किसी राह चलते के बारे में कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ आप, हमें अब वालदेन को भी रिस्पेक्ट दे देते हैं हम, वजीर अमीर कोई सदर वगैरह तो उनको भी कहते हैं हिज एक्सीलेंसी, अपने बड़े बड़े उस्ताद या होते हैं उनको भी कहते हैं हाफिजाहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जनाब साहब इतने आगे पीछे चीजें लगाते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे ही बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारी रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं वो हैं, उनके बारे में कभी भी भूल के भी कोई कोई ऐसे कैजुअल रवैया ना इख्तियार करें कि जैसे आप किसी के बारे में भी कोई बात कर सकते हैं लिहाजा उनके बारे में भी कर सकते हैं, आप फ्री नहीं है इसमें, आपको ये आजादी किसी ने नहीं दी कि आप ये करें, और अगर ऐसा करते हैं तो याद रखें कहीं ऐसा ना हो पता भी ना चले और सारा कुछ आमाल नामे से वाइप आउट हो चुका हो। इसीलिए एक शायर ने कहा ना कि मैं तो अपनी जुबान को कितनी दफा अरके गुलाब से भी धो लूं तो मैं नहीं इस काबिल समझता कि आपका नाम भी लूं। अल्लाह अकबर। तो अच्छा, दूसरी बात क्या, ये मैंने जैसे आपको बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए, तो हमें फिर यहाँ से क्या मिलता है, अब हमारे सामने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है कि हम कहें हमारे लिए वो कि ला तक़ुलू राइना और हमने कहना उनज़ुरना वस्माऊ, तो हमें क्या फिर समझ आए, हम कैसे इस आयत पर अमल करें, हमारे पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है, लेकिन आपकी सुन्नत तो है ना, उसको हकीर ना समझे, आपके अहकामात तो है ना, आपने जो बातें फरमाई हैं वो तो है ना, और सुन्नतों में आप क्या करते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे सोते थे, कैसे जाते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे मामलात करते थे, सारी उनकी सुन्नतें वो हमारे सामने आती हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उनको हकीर समझ रहे हो और उनको बैकडेटेड समझ रहे हैं और उनके ऊपर नाक मुंह चढ़ा रहे हैं और उनको पेंडू कह रहे हैं और उनको ऐसे कह रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, चाहे छोटी सी बात हो छोटी सी सुन्नत हो, मगर कभी भी उसके ऊपर इतराज ना करें। कभी भी नंबर 2, कभी भी मजाक ना बनाएं उसको, मजाक ना बनाएं, चाहे वो कोई भी सुन्नत हो, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल हुलिये से मुतालिक हो, आपके पहनने ओढ़ने से मुतालिक हो, उसके ऊपर मत हंसे। नंबर 3, सुन्नत के खिलाफ ना जाए, जैसे सूरह हुजरात में ला तो कद्दीमु बैन यदै अल्लाह व रसूले, आगे ना बढ़ो अल्लाह से और उसके रसूल से, कि वो कॉन्ट्रडिक्ट ना करें कि सुन्नत कुछ कहती है और मैं कुछ और कहना शुरू, नहीं, ये ज्यादा बेहतर चीज है, ये ज्यादा अच्छी चीज है जो सुन्नत के खिलाफ हो। और जब सुन्नत सामने आ जाए तो अपनी बात को उससे ऊपर ना समझें। आप अमल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देना, मैं ये काम नहीं कर पा रही, अल्लाह मुझे तौफीक देना, लेकिन उसके ऊपर एतराज करना शुरू कर देना, अपनी बात को उससे भी आगे, अपनी अक्ल को उससे ज्यादा समझना शुरू कर देना, ये क्या बात हुई, लो ये क्या ऐसे हो गई, ये नहीं कर सकते। केयरफुल रहें, क्योंकि उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल काफिरीन अजाबुन अलीम, काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। कौन है काफिर यहाँ पे? वही लोग जो इस तरह के काम करते हैं। मा यवदुल्लदीन कफरू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन, नहीं चाहते उन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया, वो कौन से हैं? अहले किताब में से और मुशरिकीन में से, ये वो काफिर हैं जिन तक दीन का बात पहुंच चुकी और फिर भी वो अपनी जिद की वजह से, हठधर्मी की वजह से वो फिर भी नहीं मानते, उनके बारे में बात हो रही है, सारे काफरों के बारे में नहीं। जिन तो आपने, बहुत सारे काफिर थे बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको तबलीग की वो मुसलमान हो गए थे, उनकी नहीं बात हो रही, ये वो हैं जिन्होंने सुन लिया था, समझ लिया था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी नहीं आते थे। तो ये क्या दिल से चाहते हैं, बहुत इनकी बड़ी दिली ख्वाहिश है, नहीं चाहते ये, उनकी क्या दिली ख्वाहिश है, पहले दिली ख्वाहिश को देख लेते, फिर उसके बाद उसके ऊपर निगेट करेंगे। अयु नज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, के नाजिल हो तुम्हारे ऊपर कोई खैर, कोई किसी किस्म की भी खैर तुम्हारे रब की तरफ से, ये नहीं चाहते। इनको इतना ज्यादा ये है कि इनके ऊपर कहीं इनको कोई खैर ना मिल जाए, और यहाँ पे खास तौर पर किस खैर की तरफ इशारा है, ये वही इलाही की तरफ इशारा है कि इनको क्यों मिल गई, ये रसूल क्यों बन गए, इनके ऊपर ये कुरान क्यों आ गया, ये बिल्कुल नहीं चाहते। अल्लाह अकबर। और बाद में भी देखें, मुसलमानों को भी जो भी खैर मिलती थी इनको बहुत बुरा लगता था, इनसे बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए तो राईना राईना कहते थे, और इस तरह कहते थे कि कहीं अपने दिल के अंदर जो हसद और नफरत है किसी तरह तो निकालें। अब फिर जब किसी से नफरत होती तो फिर हर तरह से ही इंसान उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है कि जिससे जब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा ना, हसद है ना, और यही हसद लीड करता है जादू को। जब इंसान को हसद भी किसी से हो जाता है तभी वो जादू टूने के पीछे भी जाता है, इसको किसी तरह नुकसान पहुंचाओ। तो ये तो आए दिन याद रखें, मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोग आए दिन उनको सताएंगे, उनको, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा ना कि इनको कोई इनकी भलाई देखी नहीं जा रही, हजम नहीं हो रही कि इनको कुछ मिल जाए, ये कहीं जीत जाएं, ये कहीं कामयाब हो जाएं दुनिया में, इनको कोई खैर अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाए। और यहाँ पे खास तौर पे कौन सी खैर है, मैंने आपको बताया वही है इलाही, इनको क्यों मिल गई, इनको नहीं मिलनी चाहिए थी। वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं बताया कि क्यों उनको पसंद नहीं है या क्यों ये खैर इन्हीं को दी गई, अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो जिसको चाहे खैर दे, जिसको पर चाहे अपनी रहमत करे, यानी जिसको चाहे नबूवत दे दे, जिस पे चाहे वही इलाही कर दे। और ये अल्लाह ताला चुनता है, ये उसका खास चुनाव होता है कि चुन के किसी को खास कर लेता है, ये कोई बन नहीं सकता नबी खुद कोई मेहनतें करके बातें करके। तो अल्लाह ताला ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम है, बड़े फजल वाला है। तो यहां से हमें पता चला कि अल्लाह ताला चुनता है वही के लिए भी लोगों को। और ये देखें, ये भी एक चुनाव है ना, अल्लाह ताला ने आपको अपना कलाम सीखने के लिए चुना, इतने दुनिया में अरबों लोग हैं उनके अंदर से अगर आपका चुनाव हुआ तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझें, क्योंकि वल्लाहु यख्तसु बि रहमति ही मैयशा। मैं और आप इस वक्त किसी बाजार में भी हो सकते थे, किसी जॉब पे भी बैठे हो सकते थे, कोई घर के काम धंधों में भी लगे हो सकते थे, या फजूल कोई ऐसी काम कर रहे होते जिसका कोई हासिल नहीं है, फोन पे इधर उधर ये बातें कर रहे हो सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें चुना कि उसके कलाम को सीखें, ये बहुत बड़ा शर्फ है। जिस पर उसने कलाम उतारा वो भी शर्फ है, और जिस को कलाम के लिए सीखने के लिए चुना वो भी शर्फ है। मा ननसख मिन आयतिन, अब इसके बाद यहां पे बताया गया ये, क्योंकि ये जो यहूदी थे ये बहुत ज्यादा इतराज कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर कि ये क्या बात हुई कि कुरान में, पहले तो ये बात है कि तौरात आप कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम है और आप भी इसको मानते हो, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हो कि अब तौरात को नहीं अब कुरान को माना जाएगा। तो अगर तौरात भी अल्लाह ताला का ही कलाम है तो फिर कुरान की क्या जरूरत है? क्या अल्लाह ताला को नहीं पता था जो पहले अहकामात दिए थे, नाउज़ बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, कि वो सही अगर नहीं थे तो फिर वो क्यों दिए थे? क्या उसको नहीं इल्म था कि वो नहीं सही है? तो पहले ही सही देने चाहिए थे। फिर इस तरह से बात करते थे। और फिर कुरान में भी नस्ख हुआ, नस्ख क्या होता है? एब्रोगेट करना। नस्ख के तीन माने हैं, एक तो होता है तहवील में ले लेना, एक होता है मनसूख कर देना, एक होता है नकल करना, कॉपी कर देना। ठीक है, तो कुरान में नस्ख हुआ है यानी एब्रोगेट हुआ है, यानी एक चीज को उठा लिया गया और उसके जगह फिर दूसरा हुक्म लाया गया, ये भी हुआ है। और ये भी हुआ है कि एक चीज को बिल्कुल भुला दिया गया, ऐसा भी नस्ख हुआ है, बिल्कुल ही उठा लिया गया। ठीक है, तो नस्ख तीन तरह के हैं। नंबर वन, कुछ ऐसी आयात जिनको कुरान में रखा गया लेकिन उनका हुक्म उठा लिया गया। इसकी मिसाल ये है सूरह मुजादला के अंदर आयत नंबर 13 है शायद, कि उसके अंदर मुसलमानों को, या 12 है, तो उसमें मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया कि आपने जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करनी है तो फिर आपने सदका देना है, तो फिर बात करनी। तो आयत 13 में, अगली आयत में उसको मनसूख कर दिया गया। अब वो आयत वही है लेकिन उसका हुक्म उठ गया। दूसरा है कि हुक्म है मगर आयत नहीं है, वो है रजम की। रजम का हुक्म है अगर आज भी इस्लामी मुमलिकत है और उसके अंदर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसकी सजा रजम है, पत्थर मार मार के मार देना। कुरान में ये आयत नहीं है मगर इसका हुक्म है। और बाज दफा ना हुक्म ना आयत दोनों ही उठा लिए गए और दिल से महव कर दिए गए। और उसकी वजह क्या थी? मा ननसख मिन आयतिन और नुनसिहा, या उसको भुला दिया गया या नसख कर दिया गया उसको, यानी उसको एब्रोगेट कर दिया गया, उसको उठा लिया गया या भुला दिया गया कि साहबा उठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कुछ भी नहीं याद है कि कोई ऐसी आयत थी, भुला दिया गया जहनों से। मगर किस लिए? नाती बि खैरि मिन्हा ओ मिस्लिहा, हम उससे बेहतर ले आए या उसकी मिसल ले आए। उससे बेहतर तो फिर पहले ही क्यों नहीं लाया गया? देखें, इसको ऐसे समझे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कहता है कि एक हफ्ता पहले आपने ये दवाई खानी है, उसके बाद एक हफ्ते के बाद मेरे पास आए। जब आप एक हफ्ते के बाद जाते हैं तो फिर वो आपको नेक्स्ट कोई और दवाई देता है। वो पहली दवाई जरूरी थी उस वक्त के लिए, और उसके बाद की दवाई जो थी एक हफ्ते बाद, पहले ने असर करना था फिर दूसरी ने चलना था, वो उसके बाद वो दी गई। तो उसके अंदर आप देखते हैं, आप कभी नहीं क्वेश्चन करते तो फिर ये दूसरी वाली पहले ही दे देते। तो अल्लाह ताला जब लेकर आता है ना तो उससे बेहतर या उसकी मिसल, बेहतर कैसे, या तो आसानी में या सवाब में। जैसे आसानी में क्या बेहतर थी? अल्लाह ताला ने आसानी की 50 की जगह 5 नमाजें कर दी तो आसानी हो गई ना। और बेहतर उससे ले आता है, बेहतर जैसे पहले आशूरा का रोजा सिर्फ फर्ज था, उसके बाद पूरे रमजान के रोजे फर्ज हो गए, तो बेहतर हो गया ना, इसलिए क्योंकि सवाब ज्यादा हो गया। अब शायद हम सोचेंगे कि ऐसे बेहतर हो गया हमारे लिए 30 रोजे रखने पड़े, नहीं, 30 रोजों में 30 रोजों के सवाब भी तो ज्यादा हुआ। तो अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं नस्ख करता, उस वक्त के हालात के लिए वो चीज होती है, उसके बाद जैसे जैसे लोग उसको अब्जॉर्ब करते हैं, उसको समझ जाते हैं, तो उसके बाद फिर उससे बेहतर चीज लाई जाती। हदीस में भी है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना किया था और उसके बाद फरमाया मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, कि लोग अब समझ गए थे ना कि भाई किस तरह से वहां पे जाके एक्ट करना है। तो इसी तरह तौरात थी, तौरात के अहकामात उस जमाने के लिए थे, उस जमाने में लोगों की जो हालात, जो उनके वाकयात, जो उनकी जहनी सतह थी, जो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी थी, उसके मुताबिक थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो अहकामात दिए गए जो रहती दुनिया तक चल सकते थे, यानी इंसानियत अपनी समझ लें बलूगत को पहुंच गई थी। एक समझ लें कि जैसे इंसानियत का भी एक पहले बचपन था, फिर उसके बाद एक अपनी मेच्योरिटी को पहुंची है। तो बचपन का जमाना वो समझ लें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का था, अभी मेच्योरिटी नहीं थी, इंसानों को इतनी समझ नहीं थी, इतनी वो नहीं थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेच्योरिटी को पहुंचे और फिर अल्लाह ताला ने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया, जिस वक्त इंसानियत मेंटली अपनी मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंच गई थी। समझ आई? वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले भी भेजा जा सकता था, तो पहले क्यों नहीं भेजा गया? पहले इंसानियत को वहां तक पहुंची नहीं थी, उसका इरतका नहीं हुआ था उस तरह से, ठीक है? तो अल्लाह ताला जब ये करता है तो उसकी मर्जी है। अलम तालम अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम्हें नहीं ये पता कि अल्लाह ताला जो चाहे कर दे? अब तुम इस पे इतराज करने वाले कौन होते हो कि किए क्यों किया गया, वो क्यों किया गया? फिर पहले ही तो रात में वो भेज दी जाती, अब क्यों भेजी गई? यहूदियों को हमेशा इन चीजों के ऊपर एतराज रहा। जैसे तहवील किबला, पहले किबला बैतुल मकदस था, उसके बाद यहाँ पे क्यों कर दिया गया, ये क्या बात हुई, क्या इनको पता नहीं था, क्या अल्लाह ताला को पता नहीं था क्या? तो वो तो तुम्हारा भी तो वही खुदा है जो जिसको तुम मानते हो। और हमें यहां से बहुत बड़ा सबक क्या मिला, हमें यहां से एक बहुत बड़ा सबक ये मिला कि अल्लाह ताला जैसा फरमाए वैसा ही करना चाहिए। वो कोई हुक्म दे और उसकी हिकमत बताए या ना बताए, डजेंट रियली शुड इफेक्ट अस, इट शुड नॉट इफेक्ट अस, क्योंकि ये जो है अल्लाह ताला बता देता है, अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन अला नूर हो गया। नहीं बताता कोई मसला नहीं, हमने तो अमल करना है, हमने तो अल्लाह ताला की बात को मानना है, हमने ये थोड़ी देखना है कि ये चीज मुझे इसके अंदर कोई हिकमत समझ आई कि नहीं, ये क्यों है ऐसे, जब मुझे समझ आ जाएगी तब मैं मानूंगी, फिर तो मैंने अपनी अकल को हाकिम बनाया ना। अल्लाह ताला ने कई जगह पे कुछ चीजों की हिकमतें बता दी, कई जगह पे नहीं बताई। अल्लाह ताला ने यहां पे नासिख की भी नहीं बताई कि क्यों अल्लाह ताला ने ऐसा किया, ये तो हम अब अपनी तरफ से बता रहे हैं ना, लेकिन क्यों ऐसा किया ये यहां पे नहीं बताया गया। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अलबई उमिसुल, वो कहते हैं अलबई उमिसुल रिबा, बई जो है तिजारत जो है वो रिबा की तरह ही है, तो कोई बात नहीं अगर हमने सूद भी कर लिया तो वो भी तो तिजारत ही हो गई। अल्लाह ताला ने इसका जवाब नहीं दिया कि क्यों, कैसे वो डिफरेंट है, और क्यों अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया, तिजारत को हलाल किया, क्यों नहीं बताया? बस ये बता दिया अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया और तिजारत को हलाल कर दिया, बस। यानी तुम इन बातों के पीछे मत पड़ो कि ये क्यों किया गया, वो क्यों किया गया, ऐसे क्यों हुआ, इस तरह क्यों नहीं किया गया, ये हुक्म क्यों दिया गया, इसको क्यों उठा लिया गया, ये तुम्हारे करने की बात नहीं है। तुमने बस हुक्म को मानना है, हुक्म की पैरवी करनी है, जो चाहे हुक्म आपकी मर्जी का है या नहीं है, चाहे हुक्म आपकी ख्वाहिश का है या नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे करे, अल्लाह ताला को कोई बाउंड नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि वो अपने हुक्म की जरूरी वजाहतें दे और हिकमतें बताए कि क्यों उसने हमें ये कहा है। नहीं, चाहे हिकमत बता दे, चाहे किसी हुक्म को उठा ले, चाहे उसको बाकी रखे, चाहे उसको खत्म कर दे, उसकी मर्जी है, चाहे तुम्हारी तबीयत आमादा हो या ना हो, तुमको मानना है। तो इसमें अल्लाह ताला का एक पता चलता है उसकी पावर, ठीक है, कि तुम ऐसे नहीं समझो, अगर तुमने कोई किसी इंसान से जैसे आप पूछते हैं अपने सबॉर्डिनेट, तुमने ये काम क्यों किया है, बताओ मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दो, कोई अल्लाह ताला से एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकता कि उसने ये हुक्म क्यों दिया है। तुम मुसलमान हो, तुम बस समय ना वाता ना करो। और इसी में जलाल नजर आ रहा है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर अलम तालम अन अल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्थ। तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला की बादशाहत आसमानों जमीन के ऊपर है, जो चाहे करे। तुम कैसे इतराज करते हो, कभी किसी चीज पे इतराज, कभी किसी चीज पे इतराज। तो यहूदियों का ये तरीका था। आज हम अपने आप को भी देखें कि क्या हम ये इतराजात करते हैं कि ये आयत क्यों ऐसे, पर्दे के अहकाम क्यों ऐसे, चार शादियों का क्यों कहा गया। लो आदमियों को वहां पे हूरे मिलेंगी और हमें क्या मिलेगा, और इस तरह की फजूल चीजें इतराजात करते रहना। क्या तुम्हें नहीं पता है कि अल्लाह ताला की बादशाहत आसमानों जमीन में क्या बताती है ये बात। एब्सोल्यूट अथॉरिटी उसके पास है, तुम किसी इंसान की नहीं बात कर रहे हो, तुम देखो तो सही तुम किसकी बात कर रहे हो। लिहाजा ऐसी बहसें करना, ऐसी बातों में इन्वॉल्व होना, ऐसी मजलिसों में बैठ के इस तरह के शोशे छोड़ना, ये क्या बात हुई, ये क्या बोल लो जी ऐसे है, ये हमारी हमें जेब नहीं देता। इससे बहुत समझना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हो। क्या तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है, वो तुम्हारे साथ क्या जुल्म करेगा। उसने तो फरमाया कि वो कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, तो तुम इस पे भरोसा नहीं करते। तुम्हें ये नहीं पता वो सबसे ज्यादा तुम्हारा खैर ख्वाह है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तो वो उसकी बादशाहत है। और वा मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय वला नसीर, इससे क्या पता चलता है, वो उसके सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त ना कोई मददगार है। यानी अगर वो तुम्हें छोड़ देना फिर तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। तो ये यकीन रखो कि वो मेरा वली है। वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वली, वो जैसे आप शादी पे एक लड़की का वली होता है, वो उसका उसका प्रोटेक्टर होता है, यानी उसके उसका इंटरेस्ट में बात करता है, इसलिए उसको खड़ा किया जाता है। और नसीर मददगार, अल्लाह ताला तुम्हारी बेस्ट इंटरेस्ट में बात करने वाला है, वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा हिमायती है। ये तुम उसके ऊपर शक करते हो उसने क्यों ये अहकाम दे दिए। अम तुरीदुना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कबल, क्या तुम चाहते हो कि तुम भी सवाल करो अपने रसूल से उसी तरह जिस तरह मूसा से इससे पहले सवाल किए गए। कहा जाता है कि ये मुफसिरीन कहते हैं ये यहूदियों के बारे में ही कहा गया, उन्हीं की उन्हीं से बात हो रही है कि तू रसूलकुम, यानी रसूलकुम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाज कहते हैं कि नहीं मुसलमानों से बात हो रही है, कि मुसलमानों में जो इस तरह के थे मुनाफिक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसे सवालात करने लगे, या जो बिल्कुल सादा लौ से मुसलमान थे वो उनसे मुतासर होकर यहूदियों से करने लगे, या यहूदियों ने कोई कहा जा रहा है कि तुम्हारे भी तो ये रसूल है। तो सारे तफसीरों में हर तरह से लिखा हुआ है, हर तरह से ही आप समझें इसको कि बात असल क्या है, कि ये यहूदी है या कोई भी है, सारों के रसूल हैं। ये नहीं कि तुम्हारे रसूल मूसा अलैहिस्सलाम थे और मुसलमानों के रसूल जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्या तुम ऐसे उनसे सवाल करना चाहते हो जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से उनके जमाने में यहूद ने किए, क्योंकि उन्होंने तो अपने रसूल को इतना तंग किया कि कहा कि हमें दिखाओ लाके, कि अल्लाह ताला को सामने लाके दिखाओ। और उन्होंने और भी इतना सताया जो सूरह सफ में आता है, कि हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद कहने लगे कि तुम मुझे इतना सता रहे हो हालांकि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल भेजा गया हूं, तो तुम मुझे इतना इस चीज के अंदर सता रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये लोग सवाल पे सवाल करते रहते थे, और आपने गाय के वाके से देख लिया उन्होंने कितने सवाल किए। तो तुम इस तरह सवाल मत करो, इससे हमें बता दिया गया, उस जमाने में भी उन लोगों को भी बता दिया गया कि तुम इस तरह से चाहते हो कि तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे सवालात करो। जैसे एक सहाबी ने कह दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज की फर्जियत के बारे में बताया तो उन्होंने पूछा या रसूल क्या हज हर साल फर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर पूछा हर साल फर्ज है, फिर आप खामोश रहे। फिर जब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा, आपने फरमाया कि अगर मैं ये कह दे कि हर साल फर्ज है तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बस सवालात इंसान के लिए फिर मुश्किलात पैदा कर देते हैं। जैसे गाय के वाक्य में देखे, वो आम किसी भी गाय को जिबा कर लेते, लेकिन उन्होंने इतने सवालात किए कि उसके बाद उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता गया उस गाय को फाइंड आउट करना। इसी तरह बाज लोग सवाल पे सवाल करते रहते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं होता, ऐसे बारीकियों से सवाल लेकर आते हैं, फिर अगर कोई बता दे कि ये नहीं है सही, तो आपकी जान ही मुश्किल में पड़ गई फिर। और उस वक्त खास तौर पे जब कुरान उतर रहा था, अहकामात उतर रहे थे, जितने ज्यादा सवालात करते तो क्या होना था, कुछ चीजें तो ठीक है एक इंसान के ऊपर छोड़ दी गई, लेकिन अगर हर चीज को हलाल हराम हलाल हराम हर तरफ हलाल हराम ही लिखा होता, तो कितना मुश्किल होता लोगों के लिए चलना जिंदगी में। लिहाजा बहुत ज्यादा सवालात को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। सवाल सिर्फ वो किया जाए जो अमल से मुतल्लिक हो। बाज लोगों को बस सवालात करने का शौक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन खोल दें आप यहाँ पे 4 घंटे भी बैठे रहेंगे, क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं होंगे। और ऐसे सवालात जिनका अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी इंसान वो सवाल करे ना जिससे जिसको आपने करके कुछ समझना है, वो सवालात जिनसे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अच्छा रसूल इस वक्त जो चले गए दुनिया से वो क्या कर रहे होंगे, अच्छा फरिश्ते आसमान पे क्या कर रहे हैं, अच्छा फलां तो उसमें कब्र में क्या हो रहा है उसके साथ, अच्छा जिनका कोई ताल्लुक नहीं, हमारे ही अमल में क्या फर्क आएगा उससे। इस तरह के बेजा तो सवाल करने से पहले सोचा करें, क्या इसका सवाल का मेरे अमल से कोई ताल्लुक है, इससे मुझे कोई फायदा होगा, कोई फायदामंद है सवाल, या ऐसे ही बस सवाल बराए सवाल करते चले जाना। ये भी यहूदियों की एक तरीका था, इन इन सारे तरीकों को बता के हमें क्या बताया जा रहा है कि आपने इससे बचना है। तो अल्लाह ताला को जो 3 चीजें नापसंद है ना, उनमें एक है कीलो काल, बस ही सेज दी सेज, बस इधर उधर से बातें करते रहना, बेजा सवालात और माल को जाया करना। तो सवालात ऐसे ही करते नहीं रहना चाहिए। हाँ वहां पे जरूर सवाल करें जहां पे आप, हमने कुछ समझना है, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया पूछो जिनको पता है उनको पूछ लो, अगर तुम्हें नहीं पता मसलन ना आपकी नमाज से मुतल्लिक है, तहारत से मुतल्लिक है, किसी से आप पूछें जरूर, क्योंकि वो अमल से मुतल्लिक है, गलत सलत ना करते रहें, विरासत से मुतल्लिक है, ऐसे बहुत सारे सवालात होते हैं। तो ठीक है नहीं समझ आ रही, पूछ लें बजाय इग्नोरेंस में रहने के। लेकिन ऐसे सवालात करना जैसे अब मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए थे, कि उन्होंने खुद क्या उठे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने वो बताया सूरह सफ में, इस कला मूसा ले कौमे या कौमे लिमा तुजूनानी वो कतालमुनानी रसूलुल्लाह अलैकुम, तुम क्यों मुझे अज़ियत देते हो जबकि तुम्हें पता है मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो कई ब्लैस्फेमस सवालात भी करते थे, तो इसलिए यानी जिनमें गुस्ताखी होती थी, इसलिए सवाल का भी हमें बता दिया गया। तो वह मैं यतबद्दल कुफरा बिल ईमानी फकद्दल्ला सवा असबीर, जिसने ईमान के बदले कुफर को ले लिया, ईमान को दे दिया और उसके बदले में कुफर ले लिया, तो वो सीधे रास्ते से हट गया। यानी ऐसे सवालात ना करो जिनमें कोई एतराज हो, या जिससे ईमान ही चला जाता है, कई सवालों से ईमान चला जाता है, कई बहसों से ईमान चला जाता है, कई एतराजात करने से ईमान चला जाता है, क्योंकि सवाल करते हैं उसके अंदर ही एक एतराज भी होता है, ये ऐसे है, ये क्या बात हुई, ये अब ये क्या है, ये सवाल में ही एतराज भी है। और कसरत है सवालात जब करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये भी होगा, तो ऐसे सवालात से मना किया गया। ये सारी देखिए हमारे हमारी जिंदगी के लिए असूल हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं कि किन चीज़ों को अल्लाह ताला नहीं पसंद करता, कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला ने उन कौमों के अंदर से हमें मिसाल दे के समझाई है कि हम उन चीज़ों से बाज रहें। जादू के बारे में, शैतान को फॉलो करने के बारे में, शैतान को फॉलो करेंगे जाहिर है तबाही की तरफ ही लेकर जाएगा, खैर की तरफ तो नहीं लेकर जाएगा, जादू कुफर है, जादू के तोड़ के लिए भी जादू ना शुरू कर दें। फिर अल्लाह ताला ने आजमाइशें रखी हैं जिनसे वो टेस्ट करेगा, और कई चीज़ें होंगी हमें बहुत टेम्प्ट कर रही होंगी कि आए मुझे ये पता चल जाए किसी तरह, आए मेरी ये चीज़ ऐसे हो जाए जैसे मैं चाहती हूँ, लेकिन वो टेस्ट होगा हमारे लिए। और फिर हाँ जब जब जादू की कोई बात आए तो फिर भी ये यकीन रखें कि अल्लाह के इज़न के बगैर जादू भी नहीं हो सकता, और अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में दें, उसकी हिफाजत में दें। और ईमान का मतलब क्या है? कुफर को छोड़ देना, ये भी हमें पता चला कि ईमान कुफर को छोड़ना है, कुफर और ईमान एक साथ नहीं रह सकते। तो या तो ईमान ले लें या कुफर। और फिर जो ये जादू मंदू जादू की चीजों के अंदर जाता है, वो फिर अपने ईमान को सौदा कर लेता है, फिर बस आखरत में उसके लिए याद रहो कुछ नहीं। फिर हमें एटिकेट्स पता चले, ऐसे वर्डिंग्स इस्तेमाल करना, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के बारे में जो है हुक्म उन्होंने दिए उनके बारे में कोई ऐसी बात करना जो उनके पर एतराज करना हो, या जिसमें उनकी उनको डिसरिस्पेक्ट करना हो, ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। ऐसे काफरों के लिए दर्दनाक असाब है। फिर ये समझा दिया गया कि किस तरह से वो लोग जो अहले किताब में से भी हैं, मुशरिकों में से भी हैं, लेकिन उनको ना हजम नहीं होती कि कोई भी खैर पहुंचे ईमान वालों को, जो वो काफिर जो हट धर्म है, जो काफिर हद से गुजर चुके हैं, और अल्लाह ताला ही है जिसको जो चाह रहमत चाहे अता करें। फिर हमें ये पता चला कि कुरान में नसख हुआ है, और इस वक्त सिर्फ 5 जगह हैं जहाँ पे जो आयात मंसूख हो चुकी हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, सिर्फ 5 आयात हैं कुरान में। तो जैसे विरासत के बारे में कहा गया था ना कि विरासत जो है, पहले कहा गया कि आप वसीयत करें, हर एक वसीयत करेगा, भाई इसको इतना हिस्सा मिले, इसको इतना हिस्सा मिले, और उसको उतना ही दिया जाता था। उसके बाद अल्लाह ताला ने विरासत का कानून उतार दिया, तो फिर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने 1 साल तक, एक औरत जिसका शौहर फौत हो जाए, 1 साल तक वो वहाँ पे रहे जहाँ पे उसका इद्दत करे, लेकिन उसके बाद उसको कम कर दिया गया। तो इस तरह की कुछ आयात हैं, 5 आयात ही हैं जो कि मनसूख हैं। और फिर हमें सवाल का पता चला कि सवाल हमें कैसा सवाल करना की इजाज़त है, और बेजा सवालात करते रहना या बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे इंसान का ईमान भी जा सकता है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। आप तिलावत सुनिए।
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه